नमस्कार भारत, आज है 29 मई दिन सोमवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। यूरोप अब अमेरिका और ब्रिटेन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। G7 सम्मेलन के नतीजे से निराश एंगेला मर्केल ने किया ऐलान।
Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten,
कश्मीर घाटी में हिज्ब कमांडर की मौत के बाद बंद का दूसरा दिन, कल पत्थरबाजी के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लागू। विशेष रिपोर्ट अमेरिका से, जहां बाल विवाह पर रोक की हो रही है मांग।
अमेरिका जैसा मुल्क जो इतना डेवलप्ड, इतना एडवांस हर चीज में, इनको तो सबसे पहले ये चीज होनी नहीं चाहिए थी कानून, और अगर है तो उसको खत्म करना चाहिए।
होगी पाकिस्तान से उसतुल्ला खां की डायरी और खेल और खिलाड़ी, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। G7 में पेरिस संधि पर समझौता न होने से निराश जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोप अमेरिका और ब्रिटेन के भरोसे पर पूरी तरह नहीं रह सकता। सिर्फ ट्रंप के समर्थन दा देने की वजह से इस संधि पर समझौता नहीं हो पाया था। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने वॉनसन प्रांत के पूर्वी तट से एक अज्ञात मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक को हाल की घटना का आकलन करने के लिए बुलाया है, क्योंकि इसे लेकर कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बना हुआ है। एक हफ्ते पहले उत्तर कोरिया ने पुष्टि की थी कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो जापान के सागर में लैंडिंग से पहले 500 किलोमीटर दूर तक गई थी, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया ने अपने पड़ोसी के साथ शांति स्थापित करने की उम्मीदों को खत्म कर दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने भ्रष्टाचार के घोटाले के खिलाफ लड़ रहे कानून मंत्री को हटा दिया। ओस्मार सेरेगलियो ने टॉर्केटो जर्डिम की जगह ली है। ये बदलाव क्यों किया गया, इसकी वजह नहीं बताई गई। ब्राजील की सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्टाचार के मामले में टेमर के खिलाफ जांच कर रही है। उन पर लाखों डॉलर रिश्वत के तौर पर लेने के आरोप हैं। टेमर का कहना है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ पार्टियों ने सरकार के गठबंधन को छोड़ दिया है। देश भर में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। प्रदर्शनकारी देश में नई सरकार की मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा,
Hoje não tem muito espaço para ficar briga de ideologia e de
अभी हमारे पास पक्षों के बीच वैचारिक संघर्ष या एक दूसरी पार्टी से लड़ने का मौका नहीं है, लेकिन टेमर को बाहर करने के विचार को लेकर सबके बीच आम सहमति है। ये थे प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कश्नर की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा के लिए कहा है। वो मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसके मुताबिक जैरेड ने दिसंबर में एक मुलाकात के दौरान बैक चैनल यानी गुप्त व्यवस्था बनाने को लेकर बात की थी। ABC से बात करते हुए कांग्रेस के एडम शिफ ने कहा कि ये स्थापित करना जरूरी है कि कश्नर रूस से अपने संपर्क को लेकर सच बोल रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा,
There's another question about his security clearance and whether he was forthcoming about his contacts on that. I think we need to get to the bottom.
उनकी सुरक्षा मंजूरी के बारे में एक और सवाल है कि क्या वो रूस से संबंधों पर बात करने वाले थे। मुझे लगता है कि हमें इन आरोपों की तह तक जाना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस की समीक्षा करना चाहिए कि वे सच्चे थे या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है कि वो इस तरह की मंजूरी को बरकरार रखें। ये थे एडम शिफ के शब्द। अमरीका के अधिकारी चरमपंथ के खतरों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के अपने साथ लैपटॉप कंप्यूटर रखने पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं। अमरीका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख जॉन केली ने कहा है कि चरमपंथियों को किसी अमरीकी विमान को उड़ा देने का ख्याल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए ये खतरा बहुत वास्तविक है। अमरीका ने पहले से ही 8 देशों से अमरीका आने जाने वाले विमान में लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, जिनमें अधिकतर मध्य पूर्व के मुस्लिम देश हैं। रूस ने अपना पहला पोस्ट सोवियत मीडियम पॉल कमर्शियल एयरक्राफ्ट उतारकर प्रतिस्पर्धा वाले हवाई यात्रा के बाजार में प्रवेश किया है। MS-21, जिसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है, लोकप्रिय बोइंग 737 और एयरबस A320 की तरह उड़ान भरेगा। ये 6000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है और इसमें 200 सीटें हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ऐसा लग रहा है अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यूरोपीय संघ के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जर्मनी की ताकतवर नेता चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि यूरोप अब पहले की तरह अमेरिका और ब्रिटेन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। जर्मनी में सितंबर में चुनाव होना है और कल म्यूनिख में एक चुनावी सभा में चांसलर मर्केल ने कहा कि वो समय जबकि वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हुआ करते थे, वो समय बदल रहा है और इसका आभास उन्हें पिछले कुछ दिनों में हुआ है। उनका ये बयान कल ही इटली में समाप्त हुए G7 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद आया है, जहां अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 2 साल पुरानी पेरिस संधि को समर्थन देने से मना कर दिया। पूरे ब्यौरे के साथ तृप्ति श्रीवास्तव।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के जीतने और ब्रिटेन के ब्रेग्जिट के बाद यूरोप अमेरिका और ब्रिटेन के भरोसे पूरी तरह नहीं रह सकता। मर्केल का कहना है कि वो दोनों देशों के अलावा रूस से भी दोस्ताना रिश्ते चाहती हैं, लेकिन यूरोप को अब अपनी किस्मत के लिए खुद ही लड़ना होगा। मर्केल का ये बयान इटली में G7 शिखर बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन के बारे में 2015 की पेरिस संधि पर मतभेदों के सामने आने के बाद आया है। मर्केल ने इसे बेहद मुश्किल बताया था। इटली के सिसली में चले 2 दिन के G7 सम्मेलन में अमेरिका के समर्थन न करने की वजह से इस संधि पर समझौता नहीं हो पाया। मतभेद इतने गहरे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप बिना संवाददाता सम्मेलन किए निकल गए और बाद में ट्विटर पर लिखा कि वो पेरिस संधि के बारे में अगले सप्ताह फैसला करेंगे। म्यूनिख में एक रैली को संबोधित करते हुए मर्केल ने कहा, वो वक्त बीत चुका है जब हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो सकते थे। मैंने इस बात को पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है और इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम यूरोपीय लोगों को अपनी किस्मत खुद तय करनी होगी। अमेरिका और ब्रिटेन से दोस्ताना रिश्तों के साथ और बाकी देशों जैसे रूस के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाते हुए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी किस्मत बनाने के लिए अपने भविष्य की लड़ाई खुद ही लड़नी है और ये सब मैं आपके साथ मिलकर करना चाहती हूँ। बर्लिन में BBC संवाददाता डेमियन मैगनिज ने कहा कि मर्केल की ये टिप्पणी यूरोपीय यूनियन के अंदर बढ़ती मुखरता का संकेत है। मर्केल ने कहा कि जर्मनी और फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच के रिश्ते प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे पहले एंगेला मर्केल ने सिसली में पेरिस संधि पर G7 में हुई बातचीत को 6-1 बताते हुए बहुत असंतोषजनक तो नहीं लेकिन बेहद मुश्किल बताया था। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान जलवायु समझौते पर संदेह जताया था और कहा था कि वो पेरिस संधि को छोड़ देंगे। ये दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता है जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए देशों को साथ आने की जरूरत है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अमेरिका के रुख की वजह से सिसली सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर हुई बहस पर निराशा प्रकट की थी। पिछले हफ्ते ब्रसेल्स में ट्रंप ने नाटो के सदस्यों से कहा था कि वो रक्षा क्षेत्र में और पैसा खर्च करें। उन्होंने नाटो की परस्पर सुरक्षा गारंटी को लेकर प्रशासनिक प्रतिबद्धता को भी नहीं दोहराया था। BBC के रक्षा और कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस का कहना है कि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप का उस संगठन के साथ रिश्ता कितना असहज है जिसका अग्रणी देश खुद अमरीका है। खबरों के मुताबिक बेल्जियम में ट्रंप ने जर्मनी की व्यापार प्रणाली को बुरा बल्कि बेहद बुरा बताया था। उन्होंने शिकायत की थी कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को बहुत ज्यादा कारें बेचती है। ट्रंप ने अपने यूरोप दौरे को बड़े नतीजों के साथ अमेरिका के लिए बड़ी सफलता बताया था।
अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यूरोपीय संघ का बदलता समीकरण।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिज्ब कमांडर सबजार अहमद बट की मौत के बाद अलगाववादियों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। आज बंद का दूसरा दिन होगा। पुलिस के मुताबिक कल बंद के दौरान घाटी में 6 जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। क्या है ताज़ा सूरत हाल ये जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी, चूंकि रमजान का महीना है और अभी बहुत अर्ली है, लेकिन कल ही जो इंस्पेक्टर जनरल मुनीर खान है IGP पुलिस के, उन्होंने कल ही कहा था और जिला प्रशासन ने भी ये घोषणा की थी कि आज ही जो है कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के तो सभी जिलों में और उत्तरी कश्मीर के कुछ जिलों में भी और खासतौर से श्रीनगर भी कम्प्लीटली सील रहेगा और ऐसी स्थिति कल भी रही थी। एक और मामला है कि बुरहान वानी जो पिछले वर्ष जब मारे गए एक एनकाउंटर में, तो उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हुआ था लोगों की तरफ से और उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। पहले ही 24 घंटे में कोई 20 लोग मारे गए थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया गया दक्षिणी कश्मीर में, पुलिस का कहना है कि उसकी वजह से एक तो मृत्यु भी नहीं हुई किसी की और लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया ब्रेक करने का। और कल देर रात जो पुलिस ने वक्तव्य जारी किया था उसके मुताबिक केवल 6 थानों पर पत्थरबाजी की घटनाएं घटी थी, जिसमें कोई 12 लोग जो है वो मामूली तौर पर घायल हुए थे, ऐसा पुलिस का दावा है
जी। और इसको राजनीतिक तौर पर सुलझाने के लिए राजनीतिक हलकों से वहां से भी कोई कोशिश हो रही है, अभी जो वहां पर फिर से नए तरह का एक माहौल तैयार हो रहा है?
जी देखिए, गुस्सा तो होता है ऐसे समय पे, क्योंकि सब्जार भट्ट जो है वो जाहिर है बुरहान वानी के साथ ही थे और जो ये नई मिलिटेंसी कश्मीर में खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में आई है, ये मिलिटेंट्स जो है वो 90s की तरह अंडरग्राउंड नहीं है, सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें होती हैं और अपने असली नाम से ये जाने जाते हैं और उसी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, जाहिर रिश्तेदारियां होती हैं, दोस्त होते हैं इनके। तो इसकी वजह से ऐसे किसी कमांडर को जब किसी एनकाउंटर में मारा जाता है तो लोगों की प्रक्रिया ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन जो ही ये सब होता है तो प्रशासन 2-3 लेवल से बहुत ज्यादा हार्श रहता है। एक तो पहले ही यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप दक्षिणी कश्मीर में किसी भी फोन पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे फोन नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। इसी तरह से ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी गई है और दूसरा ये है कि कर्फ्यू जो है मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर में लगा दिया गया है, यातायात पे पाबंदी है, लोगों का चलना फिरना दोबर हो रहा है और उस पर ऐड कर लीजिए कि अलगाववादियों ने भी जो है कल भी हड़ताल की कॉल दी थी और आज भी बंद का आह्वान कर रखा है। तो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव एंगर है जिसको राजनीतिक स्तर पर भी कुछ लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और जो हाल ही में चुने गए हैं पार्लियामेंट के लिए, उन्होंने फिर एक बार दिल्ली से ये कहा है कि वो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू करें, गवर्नर राज लगाएं, क्योंकि उनका आरोप है कि महबूबा मुफ्ती की गठबंधन सरकार जो है वो हर एक स्तर पर नाकाम हो गई है।
श्रीनगर कश्मीर घाटी में ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते चलें आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों को खंगाल चुकी हैं और स्टूडियो में साथ हैं हमारे। तृप्ति, क्या खबरें दे रहे हैं आज अखबार?
जी अपूर्व जी, आज हिंदुस्तान टाइम्स की खबर जो है पहले पन्ने पर ये जो खबर है, कल केरल के कन्नूर में शनिवार को जो बीफ फेस्टिवल में घिनौना एक मोड़ लिया, ये अखबार ने लिखा है कि कुछ यूथ कांग्रेस के नेताओं ने लोगों के सामने ही गायों को काटा और पका हुआ मांस सब में बांटा और इस मामले में 16 कथित आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 428 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि 428 जो धारा होती है इसके तहत दोषी पाए जाने वालों को 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं पूरी घटना को लेकर अखबार ये भी लिखता है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि जो भी कल केरल में हुआ वो विचारहीन, बर्बरतापूर्ण और मेरे लिए व कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एक खबर छापी, हालांकि ये खबर सारे अखबारों में है, जो सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में उनकी सेना एक गंदे प्रॉक्सी वॉर से जूझ रही है और जिसके लिए नए माध्यमों से ही लड़ा जा सकता है। यह कहकर उन्होंने बुड़गाम में पिछले महीने जो खून खराबा रोकने के लिए मेजर लितुल गोगोई के विवादास्पद मानव ढाल बचाए जाने का एक बार फिर से बचाव किया है। अखबार लिखता है कि PTI को दिए एक इंटरव्यू में जनरल रावत ने कहा है कि मेजर गोगोई को सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य युवा अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना था जो कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं।
जी।
एक खबर यहाँ पे एशियन एज की है जहाँ जिसमें कि माओवादियों ने पर्चा जारी कर अभिनेता अक्षय कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को सुकमा में मारे गए जो 12 CRPF के जवान परिवारों की आर्थिक मदद उन्होंने जो की थी उसको ना करने की धमकी दी है। अक्षय कुमार ने 9 लाख रुपए और सायना नेहवाल ने 50,000 रुपए की सहायता राशि दी थी। इन पर्चों में अक्षय कुमार और शटलर साइना नेहवाल को कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा है कि पीएलजीए के हमले में मारे गए जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता देना बंद करें, और माओवादियों ने कलाकारों, खिलाड़ियों व दूसरी ऐसी हस्तियों से कहा है कि वो माओवादियों का साथ दें। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प खबर है जो अमर उजाला ने लिखी है कि इसरो जो है वो दुनिया का सबसे भारी रॉकेट बना रहा है, और अखबार ये लिखता है कि इसका वजन 200 हाथियों के बराबर होगा। अखबार का ने लिखा है कि इसरो की योजना कामयाब रही तो रूस, अमरीका और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ऐसे स्वदेशी रॉकेट GSLV Mk 3 को विकसित कर रहा है जिसका वजन पूरी तरह विकसित 200 एशियाई के बराबर होगा, और ये रॉकेट भविष्य में भारतीय जमीन से भारतीयों को आकाश में भी ले जा सकेगा।
200 हाथियों के बराबर वजन वाला रॉकेट बना रहा है।
बिल्कुल जी। अच्छा, और एक खबर ये भास्कर, दैनिक भास्कर मेरे हाथ में है, जिसमें कि नेशनल शूटर ने अपहर्ताओं को गोलियां कैसे मारी और अपने देवर को पुलिस के आने से पहले छुड़ाया है, उनकी दिलेरी की ये खबर है। अखबार में लिखा है कि देवर को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाने के लिए महिला नेशनल शूटर की बहादुरी और सूझबूझ देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी।
शूटर का नाम की कहानी है, और शूटर का नाम
जी दिल्ली की ही कहानी है।
शूटर का नाम,
शूटर है आयशा फलक, और उन्होंने अपने देवर आसिफ की रिहाई के लिए बदमाशों से 25,000 की बदमाशों ने उनसे फिरौती मांगी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को कॉल किया और अपने देवर को बचाया है।
जी चलिए, ये एक थी तो अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब आज विशेष रिपोर्ट का समय है। आमतौर पर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पिछड़े इलाकों या विकासशील देशों से जोड़कर देखा जाता है। अगर यह कहा जाए कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश के कई प्रांतों में भी बाल विवाह को कानूनी संरक्षण हासिल है तो शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई प्रांतों में कानूनी तौर पर 14 वर्ष तक की आयु के लोग भी शादी कर सकते हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में ये सीमा 12 साल की भी है। अब अमेरिका में इस तरह के कानून को बदलने के लिए मुहिम में तेजी आ रही है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की विशेष रिपोर्ट।
आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र में किसी व्यक्ति की शादी को बाल विवाह माना जाता है। अमेरिका के अधिकतर प्रांतों में कानूनन 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन इन प्रांतों में 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को भी शादी करने की इजाजत है अगर उनके माता पिता इजाजत दे दें और अदालत के जज भी उसे मंजूरी दे दें। इनमें आइडाहो, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मेरीलैंड जैसे कई प्रांत शामिल हैं। अमरीका में सक्रिय कई मानवाधिकार संस्थाएं कई वर्षों से बाल विवाह खत्म करने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इनमें ह्यूमन राइट्स वॉच, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, तहरीक जस्टिस सेंटर आदि शामिल हैं। बाल विवाह के खिलाफ मुहिम में शामिल संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की हैदर बार ने एक बयान में कहा कि ये वाकई चौंका देने वाली बात है कि न्यूयॉर्क में 14 वर्षीय लड़कियों को शादी करने की कानूनन इजाजत है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले ऐसे कानून में बदलाव जरूरी है। अमेरिका के कई प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सकते और देश की फौज में भर्ती नहीं हो सकते। इसके अलावा कई प्रांतों में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब, सिगरेट बेचने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन विवाह के मामले में 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता और अदालती जज की मंजूरी के साथ विवाह की इजाजत है। अमेरिका में एक शोध के अनुसार 19 वर्ष से कम आयु में शादी करने वाली लड़कियां अधिकतर हाईस्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती हैं और इनमें से कई को गरीबी में जीवन गुजारना पड़ता है। इसी तरह 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी अधिक झेलनी पड़ती हैं, और कई मामलों में बाल विवाह के बाद लड़कियों को पति के हाथों प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। न्यूयॉर्क में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए काम करने वाली एक संस्था टर्निंग पॉइंट की रूबीना नियाज को इस कानून पर हैरत है।
एक्सेप्शंस के साथ भी 18 साल की छोटी से छोटी उम्र के बच्चे बच्चों को शादी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो जो मुसलमान कंट्रीज के जो लोग हैं, मुल्क हैं, उनके बच्चे बच्चियों के लिए अगर ये एक्सेप्शन है या ऑर्थोडॉक्स जूस के लिए है तो फिर भी ये चाइल्ड अब्यूज ना, आप चाहे उसको जज एक्सेप्शन दे या पेरेंट्स दे या जो भी करें, ये तो आउटराइट ये चाइल्ड अब्यूज है और इसको खत्म होना चाहिए। और अमेरिका जैसा मुल्क जो इतना डेवलप्ड, इतना एडवांस हर चीज में, और दूसरे मुल्कों को हर वक्त तनकीद होती है इस मुल्क से चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, तो इनको तो सबसे पहले ये चीज होनी नहीं चाहिए थी कानून में। और अगर है तो उसको खत्म करना चाहिए।
रुबीना नियाज बताती हैं कि उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें माता पिता 18 वर्ष से कम की अपनी बेटियों की शादियां जबरदस्ती किसी उम्रदार शख्स से करवाना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि कुछ धार्मिक गुटों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। आंकड़ों के अनुसार सन 2000 और 2010 के बीच अमरीका के 38 प्रांतों में 18 वर्ष से कम आयु के करीब 1,67,000 बच्चों की शादियां हुई। न्यूयॉर्क प्रांत में सन 2001 और 2010 के बीच करीब 4,000 ऐसे बच्चों की शादियां हुई जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब बाल विवाह के खात्मे के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करवाने का अभियान भी शुरू किया है। इस वर्ष फरवरी महीने में न्यूयॉर्क प्रांत की सेनेट में बाल विवाह रोकने के मकसद से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में न्यूयॉर्क प्रांत में शादी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष करने की बात कही गई है। यह नया बिल 17 वर्ष से कम उम्र के लोगों की शादी पर प्रतिबंध तो लगाएगा ही, लेकिन 17 वर्षीय लोगों को भी शादी करने के लिए अदालत के जज की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब अगले महीने ये बिल न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली में पेश किया जाएगा। न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली की सदस्य एमी पोलिन कहती हैं कि इस बिल के लिए समर्थन बढ़ रहा है।
There's growing support with any new idea, even though you might say...
अब बिल के समर्थन में लोग आना शुरू हो रहे हैं। अभी काफी काम किया जाना बाकी है, जबकि ऐसे कानून के लिए तो उम्मीद यही होगी कि लोग फौरन समर्थन में आएंगे। ये थे न्यूयॉर्क प्रांत की असेंबली की सदस्य एमी पोलिन के शब्द। बाल विवाह की समस्या विश्व भर में पाई जाती है, उन देशों में भी जहां इसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। एक शोध के अनुसार विश्व में हर 4 में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है, और हर वर्ष करीब 1,50,00,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
पाकिस्तान में पिछले दिनों एक भारतीय महिला उज्मा अहमद को लेकर काफी चर्चा हुई। पाकिस्तान से पत्रकार वसतुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी में आज जिक्र उज्मा की पाकिस्तान से वापसी का।
मैडम सुषमा स्वराज की तरह मुझे भी डॉक्टर उज्मा के भारत लौटने की बहुत खुशी है। सुषमा स्वराज तो इस केस में पाकिस्तान के भरपूर ताउन से बहुत खुश हैं, मगर डॉक्टर उज्मा 25 दिन बाद घर वापसी के बावजूद खुश नहीं। उनका कहना है कि ये ठीक है कि ताहिर अली से उनकी पहचान कुआलालंपुर में हुई, मगर वो ताहिर अली से शादी करने नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गई थी। फिर कहा कि मैं बस घूमने फिरने पाकिस्तान गई थी। ताहिर अली ने उनसे बंदूक की नोक पे शादी की, उनका पासपोर्ट ले लिया, मारपीट की। पाकिस्तान में हर आदमी की 2-2, 3-3 बीवियाँ हैं, उन पर जी भर के जुल्म ढाया जाता है। अगर मैं वहाँ रह जाती तो या तो वो मुझे मार देते या बेच देते या फिर किसी आतंकवाद ऑपरेशन में इस्तेमाल कर लेते। मुझे डॉक्टर उज्मा की किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन से इतना प्रभावित हूँ कि पूछो नहीं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार डॉक्टर उज्मा इस महीने की 1 तारीख को दिल्ली से वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान पहुँची। 3 मई को उनकी ताहिर अली से उसके गाँव में शादी हुई। 5 मई को यानी शादी के 2 दिन बाद वो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिले बगैर सीधे ताहिर अली के गांव पहुंची। कोई तो उन्हें सीमा पर लेने आया होगा। अगले 48 घंटे में उनकी ज़बरदस्ती शादी भी हुई, मारपीट भी हुई। उन्हें यह भी पता चल गया कि पाकिस्तान में घर घर औरत जाति के साथ क्या व्यवहार होता है और हर आदमी की कितनी कितनी बीवियाँ हैं। मगर ताहिर अली अजीब आदमी निकला। वो डॉक्टर उज्मा को मार डालने या बेचने या किसी आतंकवाद ऑपरेशन में झोंकने की बजाय घर से 150 किलोमीटर परे इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन तक ले आया, और वो भी अपने पासपोर्ट और वीज़े की दरख्वास्त के साथ। शायद वो पाकिस्तान की बजाय भारत जाके डॉक्टर उज्मा को तलाक देना या जान से मारना, बेचना या किसी हमले में इस्तेमाल करना चाह रहा हो। बहरहाल कहानी जो भी हो, डॉक्टर उज्मा खैरियत से घर पहुंच गईं और ताहिर अली को वीज़ा नहीं मिला। डॉक्टर उज्मा ने वापसी के बाद मैडम सुषमा स्वराज के बराबर में खड़े होकर कहा कि भारत सबसे अच्छा मुल्क है, यहाँ मुकम्मल आज़ादी है, मगर पाकिस्तान मौत का कुआं है। बात यह है कि हर इंसान को अपने देश से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे भारत से नफरत है। मैं पाकिस्तान की तारीफ़ भारत के कीड़े निकाले बगैर भी तो कर सकता हूँ। उज़्मा को सब पाकिस्तानी जालिम नज़र आए, मगर सुषमा को उज़्मा का केस लड़ने वाला पाकिस्तानी वकील भी ऐसा नज़र आया जैसे बाप बेटी का केस लड़ता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज भी नज़र आया जिसने इंसानियत के जज्बे के तहत उज़्मा को भारत जाने की इजाज़त दे दी, और वो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और गृह मंत्रालय भी जिन्होंने सुषमा स्वराज के मुताबिक दोनों देशों के दरमियान चल रही दुश्मनी के बावजूद उज़्मा की वतन वापसी में अहम किरदार अदा किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान जितने बुरे हैं उतने ही अच्छे भी हैं। सब नज़र का खेल है। हम चाहें तो दुनिया को उज़्मा की नज़र से देख सकते हैं और चाहें तो सुषमा की नज़र से।
कैसे लगी उसत की डायरी बताइएगा। फिलहाल समय हो चला है खेल और खिलाड़ी का, आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत रोला गैरा की लाल बजरी पर खेले जा रहे साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन से, जहां कल पहले ही दिन महिला एकल वर्ग में गैर वरीयता हासिल रूस की एकातेरिना माकारोवा ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने पहले ही दौर में शीर्ष वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को बेहद आसानी से 6-2, 6-2 से हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया। वैसे ये खब्बू खिलाड़ी एकातेरिना माकारोवा साल 2011 और साल 2015 में फ्रेंच ओपन में चौथे दौर तक का रास्ता तय कर चुकी है। और अब समीक्षा। पिछली चैंपियन टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना तैयार है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और गुरुवार से इसके मुकाबले शुरू हो जाएंगे। पहला मुकाबला 1 तारीख को मेजबान इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा, जबकि पिछला चैंपियन भारत अपने अभियान का आगाज 4 तारीख रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। इस टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मेजबान इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच इन दिनों 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मैच आज खेला जाएगा। लेकिन इंग्लैंड शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका है। वैसे कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच खेला गया। इस मैच को भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 45 रन से जीता। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने बेहद शानदार प्रदर्शन कर कप्तान विराट कोहली की चिंताओं को काफी हद तक समाप्त करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को केवल 38.4 ओवर में ही महज 189 रनों पर ढेर किया। न्यूजीलैंड के ल्यूक रोंकी ने 66 और जेम्स निशाम ने नाबाद 46 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की तेज और घूमती गेंदों को समझ नहीं सके। शमी ने 47 रन देकर 3 और भुवनेश्वर कुमार ने भी 28 रन देकर 3 विकेट झटके। और इसके बाद जब टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी और 26 ओवर के बाद जब उसका स्कोर 3 विकेट खोकर 129 रन था, तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय विराट कोहली 52 और महेंद्र सिंह धोनी 17 रन बनाकर खेल रहे थे। शिखर धवन 40, अजिंक्य रहाणे 7 और दिनेश कार्तिक बिना कोई रन बनाए आउट हुए। तो क्या इस अभ्यास मैच के बाद ये माना जाए कि गेंदबाजों और बल्लेबाजों, खासकर विराट कोहली ने फॉर्म हासिल कर ली है? क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
देखिए लास्ट टाइम जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो हमारे ओपनिंग पेयर की वजह से हमको काफी मदद मिली थी। विराट कोहली ये सोचना चाहिए कि वो आईपीएल में अगर ऑफ फॉर्म रहे तो एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकती है, क्योंकि आईपीएल में बर्नआउट का भी बहुत खतरा होता है। तो ये एक अच्छा साइन है कि विराट कोहली पहले ही वार्म अप मैच में उन्होंने रन किए हैं, स्पेशली इंग्लैंड में जहां बॉल स्विंग करेगी उनके पास ऐसे बॉलर आ गए हैं, जैसे आपने मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया और फिर अश्विन और जडेजा, क्योंकि उनकी ऑलराउंड बैटिंग स्ट्रेंथ है जिससे कि हेल्प मिलती है टीम को कि बैटिंग लंबी रहे, ऑलराउंडर्स हैं। मैं समझता हूं कि इस वजह से भी इंडिया एक फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट के लिए होगी।
और अब बात बैडमिंटन की। कल दक्षिण कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया में समाप्त हुए सुधीर रमन कप को अपने नाम किया। फाइनल में दक्षिण कोरिया ने कड़े मुकाबले में चीन को 3-2 से हराया और चौथी बार चैंपियन बनने में कामयाब रहा। भारत का अभियान इस टूर्नामेंट में चीन के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार कर समाप्त हुआ था। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। जी सेवन में पेरिस संधि पर समझौता न होने से निराश जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि यूरोप अमेरिका और ब्रिटेन के भरोसे पूरी तरह नहीं रह सकता, सिर्फ ट्रंप के समर्थन न देने की वजह से इस संधि पर समझौता नहीं हो पाया था। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने वॉनसन प्रांत के पूर्वी तट से एक अज्ञात मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक को हाल की घटना का आकलन करने के लिए बुलाया। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। तो अब अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।